साधकों के लिए सबसे मंगलकारी दिन, लाभप्रद दिन गुरु पूर्णिमा होता है। इस दिव्य पर्व पे गुरु तत्व अत्यंत करुणामय होते हैं। स्वभाव से गुरु का मतलब है करुणामय, पर इस दिन विशेष रूप से करुणा बरसाते हैं इस पर्व पे। तो भक्तजन अपने अपने गुरुदेव की विशेष पूजन, विशेष सेवा, विशेष अर्चन इत्यादि करके लाभान्वित होते हैं। साधकों के लिए इससे महत्वपूर्ण दिन कोई भी नहीं होता। भक्ति का मूल जो है वह गुरु कृपा होती है। यदि गुरु की करुणामय दृष्टि हो तो हमारे अनगिनत प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और यदि व्यक्ति बिना गुरु का आश्रय ग्रहण करे, वास्तविक रूप से स्वयं के बल पे अपने कमियों को पार पाने की कोशिश करता है, तो जिस प्रकार से गुरु की कृपा से हजारों लाखों बाधाएं दूर हो जाती हैं, यदि स्वयं का प्रयास हो तो हजारों लाखों प्रकार से बाधाएं आ जाती हैं जैसे ही आश्रय छूटता है या बिना आश्रय कोई यत्न करता है। हजारों प्रकार से बाधाएं आ जाती है। भगवान की दी हुई आंख से हम इंसान संसार देखते हैं और गुरु की दी हुई आंख से हम इंसान भगवान को देख सकते हैं। जो आंखें गुरु देते हैं वो आंखें भगवान की देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चक्षु दान दिलो, ऐसे चक्षु का दान दो। चक्षु तो हैं, प्रश्न उठता है। हाँ, संसार को देखने के लिए हमारे चक्षु हैं, पर यदि भगवान का के वास्तविक रूप से हम दर्शन करना चाहते हैं, हाँ, तो वो तो दान में दिए जाते हैं। चक्षु दान दिलो जे। जहां से भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन का एकमात्र जो स्तोत्र है साधक के लिए, उसको आजीवन सबसे ज्यादा महत्व इसी ओर देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र स्तोत्र है साधक के लिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि विदेश में कि आज इससे शादी हो गई ये पसंद नहीं आया तो दूसरे से शादी हो गई, कहीं तो तीसरे से शादी करे, ऐसा नहीं होता। हमारा एकमात्र स्तोत्र जो है भगवत कृपा का, भगवत करुणा का, वो अपने निजी गुरुदेव होते हैं। तो जिनके द्वारा, जिनके चक्षुओं के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो उस ओर हमें कृपा भी प्राप्त होती है। यदि अपराध हो तो इसे बताया कि हजारों प्रकार की बाधाएं दूर होते हैं, तो हजारों प्रकार से बाधाएं आ भी जाती हैं अपराध होते होने से। और ये अपराध ऐसी चीज है कि एक होता है ना तो ये अनेक को जन्म देता है। ध्यान दें, एक अपराध मन से भी होगा तो अनेकों अपराधों का मूल बन जाएगा। जैसे बीज बोया है, एक बोते हैं तो उससे फिर करोड़ों निकला। तो गुरुदेव के प्रति, वैसे तो संत जनों के प्रति भी यदि हम जरा सा भी अपराध करते हैं तो भगवत दर्शन तो हो भी रहा होगा तो भी बंद हो जाएगा, होना तो दूर की बात है, अगर नहीं हो रहा तो कभी भी नहीं होगा, हो रहा होगा तो भी बंद हो जाएगा। रूप गोस्वामी का उदाहरण ले, हम लीला स्मरण कर रहे थे और वो हंस रहे थे, राधा रानी का वो पेड़ से लटके थे तो फूल तोड़ रहे थे, तो कृष्ण ने टहनी पकड़ी थी ऊपर से छोड़ दी, तो राधा रानी लटक गई, तो ये देख के रूप मंजरी हंस रही थी। तो ये वैष्णव, वहां से एक लंगड़े वैष्णव थे वो जा रहे थे, उनको लगा कि उनके लंगड़ेपन को देख के हंस रहे हैं, तो रूप गोस्वामी का लीला स्मरण बंद हो गया। सामान्य वैष्णव के प्रति अपराध से भी जब होता हुआ लीला चिंतन होता हुआ भगवत दर्शन बंद हो सकता है, यदि गुरु के प्रति यदि अपराध हो तो एक ओर से नहीं हजारों ओर से बाधाएं आ जाती, हजारों ओर से, कल्पना से परे है। आचार्यगण बताते हैं यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना है वो नहीं सीखता तो उसके भक्ति के मार्ग में मैं स्वयं रोड़े अटकाता हूं, भगवान खुद कह रहे हैं। यदि सामान्य वैष्णवों से व्यवहार अगर हम नहीं उचित जानेंगे करेंगे तो भगवान रोड़े अटकाएंगे, यदि गुरु के संबंध में यदि हम अत्यंत सावधान नहीं रहेंगे तो सोचिए कि भगवान को कितना कष्ट होगा और भगवान हमारे साधक से कितना अप्रसन्न हो सकते हैं। तो हमने बताया ऐसे ये अपराध जो होता है ये चेन रिएक्शन होता है, हमेशा हमेशा चेन रिएक्शन होगा, एक होगा वो अनेक को जन्म देगा, फिर वो जो अनेक होंगे वो अनेक को जन्म देंगे, तो उस अनेक में से हर एक जो है वो अनेक को जन्म देगा। चेन रिएक्शन देखा ना, साइंस की बुक में पढ़ा होगा शुरू में स्कूल में, चेन रिएक्शन बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता। गुरु जो होते हैं कल्पतरु, कल्पतरु को अंग्रेजी में कहते हैं विश फुलफिलिंग ट्री, क्या विश करें और वो पूरी कर दें, कुछ भी कामना करें, क्या हमें करोड़पति बना दो बना दिया, हमको सुंदर बना दो बना दिया, हमें आरोग्य दे दो दे दिया। तो जो गुरु होते हैं वो कल्पतरु के समान होते हैं, ठीक बात है? नहीं, गुरु कल्पतरु के समान भी नहीं होते, क्योंकि कल्पतरु जो विश फुलफिलिंग ट्री है, इच्छा पूर्ति का जो वृक्ष है, वो इच्छा करने पे पूर्ति करता है, बिना इच्छा की पूर्ति नहीं करता। परंतु जो वास्तविक गुरु होते हैं वे अपने आश्रित जनों को अपने अंग के समान ध्यान रखते हैं, अपने अंग के समान रक्षा करते हैं। आद्य अपने हाथ की रक्षा कैसे करते हैं? अपने हर चेष्टा से कि मेरे हाथ को कभी कुछ ना हो जाए या मेरी टांग को या मेरे को कभी कुछ ना हो जाए। तो वैसे गुरु अपने आश्रित जनों को अपने अंग के समान रखते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। हमारे पास हमारे साथ कई घटनाएं होती ही नहीं है क्योंकि वह रक्षा हमारी ओर आ रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता। यदि हम आश्रित जन होते हैं तो भगवान और गुरु दोनों ही करुणामय होते हैं और हमारी उन प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आध्यात्मिक विपत्तियां, पारिवारिक विपत्तियां, शारीरिक विपत्तियां, आर्थिक विपत्तियां, गुरु जो है व्यक्ति नहीं है, केवल व्यापक शक्ति है, सर्व स्थान में है। जितनी जल्दी जितनी शीघ्रता से गुरु शक्ति हमारे रक्षा कर सकती है उतनी शीघ्रता से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। एक पुकार से ही गुरु शक्ति की करुणा, गुरु तत्व की करुणा उतर आती है। हमारी इतनी प्रकार से रक्षा होती है, इतना प्रकार से हमारा मार्गदर्शन होता है, इसका हम किस प्रकार से हम इसका ऋण उतार सकते हैं? ऋण नहीं उतार सकते, बस अपने भीतर कृतज्ञता का अनुभव करते, बस हम कृतज्ञता की अनुभूति हो। किसी व्यक्ति के ऊपर भगवत कृपा है, इसका क्या लक्षण होता है? इसका लक्षण होता है भगवत जन से मिलन होना। भगवत जन से यदि मिलन हो तो उसके बाद हमें इस बात का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरा मिलन है भगवत जन से है। बार बार निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, निरंतर चिंतन करते करते विभोर होते रहना चाहिए। विभोर ये बात सोच के कि मेरा एक भगवत जन से मिलन है, मैं संपर्क में हूं, ये बात को सोच सोच के विभोर होते रहना चाहिए। मिलन मतलब क्लोजली नहीं, दूर से भी यदि क्योंकि नजर में भी हैं यदि हम, और यदि सामिप्य प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या, तो कहना ही क्या, सामिप्य प्राप्त हो जाए, वात्सल्य प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए। इसी बात का बारंबार इस बात को फील करते रहना, फील करना चाहिए हमें निरंतर। कि मुझे वास्तव में भगवत जन से मिलन प्राप्त हो रहा है, वास्तव में मेरी हर प्रकार का आध्यात्मिक और भौतिक बाधाएं दूर हो रही हैं। इसी बार का चिंतन करते 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 जब वास्तव में भक्त हृदय से चिंतन करते वो मूर्छित हो जाएगा चिंतन करते करते। ये सोच के ही पहले तो विभोर होगा, नहीं सोचेगा इस बात को तो कृतघ्नि हो जाएगा, कृतघ्नि होगा तो अपराध को जन्म होंगे, अपराध का जन्म होगा तो अपराधों का जन्म होगा, अपराधों का एक अपराध से नष्ट हो जाती है भक्ति। और यदि अपराध नहीं का तो क्या करना होगा, विभोर रहना होगा हर समय। इस हद तक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञता सोचते सोचते इस बात का मूर्छित हो जाए, जब हम इस मूर्छित होने की अवस्था में आएंगे तो होगा श्री गुरुवे नमः, वास्तव में नमन, आनंद से ही मूर्छा आ जाए कि मेरे ऊपर इतनी कृपा, अकारण अहेतु की कोई कारण नहीं। रूप गोस्वामी का भी लीला चिंतन तनिक अपराध होने से बंद हो जाता है, दर्शन चिंतन सब बंद। अनेक प्रयास करते हैं रूप गोस्वामी फिर भी बंद ही रहता है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे ऊपर अनंत करुणा हो रही है, कृपा हो रही है, हमको सिर्फ उसको एक्नॉलेज करना है। करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्नॉलेज करना है इस बात को कि भगवान गुरु की कितनी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और यदि हम वास्तव में एक्नॉलेज करते हैं या कर रहे हैं तो हमारी प्रत्येक श्वास हमारे स्वामी के रुचि के अनुसार चलेगी। प्रत्येक श्वास, दिन नहीं, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक कार्य नहीं, प्रत्येक श्वास। यदि नहीं चल रही तो बहुत खेद का और चिंता का विषय है, रीवैल्यूएट करें। ऐसा मैं क्या सही रूप से कृतज्ञता नहीं महसूस कर रही, बार बार चिंतन करना होगा इस विषय में, करना चाहिए। गुरुदेव तो कृपा की मूर्ति होते हैं, कृपा की मूर्ति, कृपा का विग्रह है कृष्ण, कृपा की मूर्ति। तो हमारी जब कृपा की मूर्ति है वो सर्वत्र कृपा बरसा रही है, तो अगर हम कृतज्ञता रूपी पात्र को रखेंगे तो हमारे जितना बड़ा पात्र होगा कृतज्ञता का उतनी कृपा हमारे को प्राप्त। पात्र किस चीज का? कृतज्ञता का। कृपा अनवरल बरस रही है असीमित मात्रा में। प्रत्येक श्वास हमारे स्वामी की रुचि के अनुसार चले, इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक श्वास से ऐसे कार्य करें जो हमारे स्वामी के इष्ट के हृदय स्पर्शियों, प्राण स्पर्शियों, हमारे भक्ति कार्य कैसे होने चाहिए, प्राण स्पर्शी, स्वामी के प्राणों को स्पर्श करें, स्वामी के हृदय को स्पर्श करें, इसको कहते हैं मनोमयी सेवा, अपने मन की नहीं, दास अपने मन की नहीं करता, स्वामी के मन के अनुसार होता है, उनके प्राणों को स्पर्श करे, छुए वो सेवा। और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कभी भी हमारे मन में गलत भाव या गलत विचार ना आए, किसी भी कार्य की वजह से हमें समझ आए या ना आए। देखिए व्यास पूजा के दिन कभी कोई वैष्णव जन गुरु जन गुरु के बारे में कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है, नहीं आता, नहीं करते, आता है तो उसे हम बलपूर्वक हटा देते हैं। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं व्यास पूजा के दिन गुरु पूर्णिमा नहीं रखते, जब व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा एक दिन नहीं रखते तो जो वास्तविक भक्त उसके लिए तो रोज ही व्यास पूजा है, रोज ही गुरु पूर्णिमा, वेद तो कुछ है ही नहीं। तो स्वप्न में भी कभी नेगेटिव ख्याल ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उस दिन व्यास पूजा नहीं बनाना चाहते हम, एक दिन जब आता है जुलाई में तब बनाना चाहते, जिसे वास्तव में भक्ति समझ आ रही है उसके लिए तो रोज ही व्यास पूजा है, रोज ही गुरु पूर्णिमा है, रोज ही जन्माष्टमी और रोज ही एकादशी, नहीं को तो कोई फील नहीं होता डिफरेंस कि आज गुरु पूर्णिमा या कल काशी थी या परसों कुछ है या आज जन्माष्टमी, सब कुछ बिल्कुल एक है। जब नेगेटिव ख्याल हमारा एक बार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनेक नेगेटिव ख्यालों को जन्म देता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी उस व्यक्ति से का संग ना करें, उस व्यक्ति से बात ना करें, वो अगर जरा से भी नेगेटिव बात बोल दे, व्यक्ति कोई भी हो। हमारे एक वैष्णव, उन्होंने कहा कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता हुआ देखो तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करो कि एक्सीडेंट मेरे साथ ना हो। और लोगों के एक्सीडेंट लोगों के साथ कैसे हुआ है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, श्रद्धा थी एक जमाने में, क्या गलती करी, नेगेटिव बात सुन ली एक बार, फिर उससे क्या हुआ, एक नेगेटिव की बात से फिर चार और सुनी, फिर और चेन रिएक्शन हुआ, फिर 16, फिर ऐसे इंक्रीज होता गया। तो हमें ध्यान देना चाहिए जिनका पतन हुआ कैसे हुआ, लर्न करना चाहिए, मेरे साथ ना हो सके। और ये हो सकता है कि जिनका हम संग कर रहे हो वो बहुत अच्छे गुरु की सेवा कर रहे हो, अचानक वो फिर नेगेटिव अगर कभी बात करें, तो चाहे हमारा कितना भी क्लोज, हमारे मेंटर या कोई भी हो, एक वर्ड भी नेगेटिव सुन ले तो हमारे को उनका संग तुरंत त्याग देना चाहिए, कोई भी क्यों ना, कितना हमारे जीवन में गुरु के समान प्रिय कोई वस्तु कोई व्यक्ति कभी होना ही नहीं चाहिए। ये गलती जो लोग नहीं समझे, तो एक टाइम में निष्ठ है व्यक्ति तब तक हम संग कर रहे हैं कोई समस्या नहीं, पर यदि वो निष्ठा में उस व्यक्ति का मई हर आए तो हमें उसका संग मलवत त्याग कर देना चाहिए। ये गुरु तत्व जो है ये बहुत खतरनाक है, आग की तरह लाभ पूरा मिलता है, बहुत जितना लाभ मिल सकता है जो हम कल्पना नहीं कर, परंतु हानि भी इतनी हो सकती है जिसकी कल्पना से परे है। हानि तो इतनी बुरी होती है कि जीवन तो इस जीवन में तो भक्ति होती नहीं, हर प्रकार के कष्ट आएंगे और मृत्यु भी बहुत दर्दनाक होती है यदि विशेष रूप से अपराध हो जाए। एक बारी किसी को महात्मा मान ले तो वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको उसमें क्या करना है? यदि कोई बात नहीं समझ आती तो विशेष रूप से कृपा प्राप्त करने के बजाय नहीं समझ तो दूर रहो और अपना भजन करो। वो क्यों कर रहे हैं ये बारे में चर्चा मत करना, ये अपराध है। एक छोटा दूसरी क्लास का बच्चा पीएचडी के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी नहीं है। आई लव माई गुरु, दिस इज द ओनली थिंग आई नो, खत्म। आई जस्ट लव माई गुरु, मैं वो मुझे दुत्कारेंगे जैसे मैं कुत्ते की तरह पड़ा रहूंगा, हाँ, सेफ गार्ड करने के लिए उनकी चीजों का। हर प्रकार से फिर भी सेवा करना है, कुत्ते की तरह पड़ा रह के। कुत्ता क्या होता है, जब तक मालिक या द्वार पे है नहीं तो लात मारे तो, पर कुत्ता जो होता है लॉयल कुत्ता वो भौंकता नहीं है। तो वास्तविक शिष्य मतलब कम से कम कुत्ते के सर पे तो आना ही पड़ेगा, मंजरी तो बाद में बने, कुत्ते के सर पे तो आना पड़ेगा कि लॉयल्टी। मेरे को कोई कुछ भी बोल दे, मैं अपने गुरुजी के संबंध में कभी कुछ नहीं सुन सकता, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे मेरे कोई गुरु भाई होए या कोई कोई भी भक्त हो, शिष्य हो, कुछ भी हो। क्यों, ये शिष्य का सबसे परम कर्तव्य, यदि कोई बात नहीं भी समझ आ रही, नहीं ठीक नहीं भी लग रही, उसको रैशनलाइज करके ठीक, खुद को भी रखना है मन में और बाकी जिससे भी बात हो। शिष्य कर्तव्य होता है कि जो भी गुरु ने बोला वो उसको किसी तरीके से समझे कि वो क्यों बोला गया, रैशनलाइज करे कि हाँ ये इसलिए बोला। शिष्य कभी किसी भी कारण से फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाता है, गुरु तत्व के प्रति अपराध हो जाता है तो सब नष्ट हो जाता है। मान लीजिए हम किसी का संग कर रहे हैं, उसने हमारे बहुत मदद किया, मतलब तो किसी भी कारण में शरीर कुछ होता है तो हमें क्या उसका संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसको कैसे समझे, ये तो जरूरी नहीं है कि वंस अ करोड़पति ऑलवेज अ करोड़पति, वंस अपॉन अ टाइम समवन वाज अ करोड़पति, इट्स ओके, तो ठीक है, आप भी यू ऑल्सो हैव हिज संग एंड बिकम अ करोड़पति, बट नाउ दैट पर्सन इज लूजिंग, यू बेटर बी केयरफुल। क्योंकि बात ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति एक शब्द में नेगेटिव सुनेंगे ना तो चेन रिएक्शन होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं प्रारंभ से जड़ से ही उखाड़ दो, यानी कि सुन के उसके बाद उसे हटाना, जड़ से उखाड़, सुनना ही नहीं कभी भी। यदि भगवत जन से मिलन है, सामिप्य है, वात्सल्य प्राप्त हो रहा है तो हमारे पर भगवान की अशेष विशेष कृपा हो ही रही है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है, नेवर डाउट योर बिलीव्स एंड नेवर बिलीव योर डाउट्स, नेवर डाउट दिस बिलीफ। यदि भगवत जन से मिलन है तो विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। मान लीजिए हम में से किसी का माया अटैक करे और गलत सुनवाना या गलत दिखाना शुरू करे माया अटैक करके, तो क्या करना चाहिए हमारे को, ये देखना, अगर हमारे को भी दौरा चढ़ता है इस प्रकार का तो मैं तुरंत एक एस्ट्रोलॉजर मुझे भी देखना है मेरी बुद्धि की दशा कैसी है इस समय, कोई कुछ चल रही है कि मेरे को खत्म हुई पड़ी है, वो देखते बता देगा। और जिसके संबंध में उसके भी एक बार पूछवा लेना तो वो उसका भी तुरंत बता देगा, पता चलने के बाद सही चीज को चुन ले। और ये कभी जानने की कोशिश ना करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अधिकार हमें दिया किसने है, भगवान और भगवान की रजामंदी से कार्य हो रहे, तुम सोच, किसी की भी रजामंदी से हो रही है आपको क्या करना, आपको भजन प्रक्रिया मिली हुई है, आप उसका लाभ उठा के भगवत प्राप्ति कर सकते हो। और जब हमारी हर प्रकार से विशेष प्रकार से रक्षा हो और वार्तालाप अधिक होगा तो फेमिलैरिटी के चांस हो सकते हैं, हो जाते हैं अधिकांश, मैंने ये देखा है। तुम कितने भी पुराने हो गए हो, हम सबके लिए ये प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हम कितने पुराने हो, 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, बंदो मोई सावधान, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। कितने भी पुराने हो गए हो, कितनी भी सेवा की हो, वंस अ करोड़पति डज नॉट नेसेसिएट ऑलवेज बींग यू बी अ करोड़पति। मेटेरियल देखा, वंस अ करोड़पति गॉन, देन यू कैन रीस्टार्ट। स्पिरिचुअली मेरा मानना यह है कि वंस अ करोड़पति गॉन, देन यू गॉन, अपराध, देन यू आर रियली गॉन। तो बहुत ध्यान रखना है, बंदो मुई सावधान मन, वी शुड बी सुपर कॉशियस। कैसा पता चलेगा कि हमारा गुरु से प्रेम है? जैसे एक ही तरीका है, जो व्यक्ति गुरु के मुख से शब्द निकले वो सुनते ही उसे फॉलो उसके हृदय में चिपक जाए, समझ लीजिए कि उसका गुरु से प्रेम है, उसका हार्ट उतना क्लीन है। चुंबक होती है, वो रस्टी आयरन को नहीं चिपकेगी, चुंबक तो चुंबक है। तो जितना हमारा रस्ट फ्री है, जितना हमारा अंदर से हार्ट क्लीन है, वो जैसे ही सुनेगा एकदम चिपक जाएगा, सुनते ही देर एक सेकंड का देर नहीं लगेगा। और जब ज्यादा एडवांस होंगे तो सुनने की भी जरूरत नहीं है, भगवान भीतर से बता देंगे ये चीज करो। एक ही निशानी है कि हमारा हृदय साफ हो रहा है, साफ अगर हो रहा है तो गुरु का सुनते ही उसे बस हमारे को उसमें उसके अलावा ना वो सुनाई देगा ना दिखाई देगा। कोई व्यक्ति कोई भी भक्त क्यों ना हो, वो हमारे और हमारे गुरु के बीच में से ज्यादा संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। नो बडी नो पर्सन नो सर्कमस्टांस नथिंग शुड स्टॉप माई फ्लो ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स माई स्पिरिचुअल मास्टर, नथिंग नो बडी। That is our real asset, हमारा the flow of affection we have for our guru. मारो स्वीकार करो रिजेक्ट करो कुछ भी करो, हम आपके द्वार पे पड़े रहेंगे बस। सब चीज का सार यही है सब प्रवचनों का कि हमारी प्रत्येक श्वास हमारे स्वामी के रुचि के अनुसार चले। चेन रिएक्शन होती है सारी चीजें, कोई भी बीज बोगे उसका पेड़ बन के आ जाएगा चार दिन बाद। कोई का बीज बो दो, आम का बो दो, व्हाट इज दैट जिसे करोड़ों बीज आते हैं, एक बीज करो। जिसका बीज बोओगे गुरु के श्रद्धा गुरु सेवा का बीज बोओगे तो वो भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई होगा। मेरी ओर से अभी इतना, यदि कोई जिज्ञासा हो तो आई विल ट्राई टू सर्व।